नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आप सभी को होली की अनंत शुभकामनाएं। रंग सारे शुभ हों आपके जीवन में, यही मंगल कामना है आप सबके लिए। लीजिए, प्रस्तुत है होली पर विशेष कार्यक्रम रंग संस्कृति एवं ऋतुओं का त्योहार होली। फूल खिले, पत्ते हंसे, पृथ्वी हंसी अनंत, महक भरी सुराहियां लेकर खड़ा वसंत। कितने कितने रंग लिए वसंत इस धरती पर उतरता है। पेड़ हरे हरे कोमल नए पत्ते पहन लेते हैं, फूलों पर रंग उतर आता है। सरसों के फूलों से जैसे धरती के हाथ पीले हो जाते हैं और पलाश सिंदूर सा दमक उठता है। ये रंग सिर्फ पत्तों और पंखुड़ियों के नहीं, सपनों के भी होते हैं। रंगों का ये महोत्सव जीवन को नए सिरे से रचता है, एक नया राग बज उठता है, राग फागुन। जी हाँ, इस ऋतुराग का सबसे चटख रंग है होली, जो गांव देहात से लेकर शहरों तक सभी को अपने रंग में भिगो लेती है। श्रोताओं, यूं तो बारहों महीने आठों पहर रंगों के ही हैं, रंग कहाँ नहीं है। आसमान, नदी, लहलहाते खेत, गुलाब, केसर, सावनी बादल, आम्रपात और नीम मंजरी, ये रंग ही तो है ना। रंग हमारे परिवेश में बहुत गहराई से घुले मिले हैं, लेकिन फागुन सचमुच रंगों के मन का मौसम है। फागुन में रंग कुछ इस तरह अपना अबोला तोड़ते हैं कि हर मन पलाश हो जाता है और हमारे सपने गुलाल हो जाते हैं। तो आज रंग पर्व होली पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे बीच हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और धर्म संस्कृति विशेषज्ञ आचार्य राजेश। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और होली की आपको भी बहुत सारी शुभकामना।
बिल्कुल, आपको भी और समस्त हमारे श्रोताओं को होली का, रंगों का ये त्योहार सुख शांति समृद्धि देने वाला हो।
देखिए, झांझ मंजीरा मृदंग, इस स्मृति के साथ होली आती है। रंग अबीर गुलाल इस स्मृति के साथ आती है। गुजिया की थाल याद आती है। तो इस माहौल में हम अपने श्रोताओं से मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज के दिन की याद से हम जुड़े। हमारे यहाँ जो भी त्यौहार होता है वो किसी न किसी आख्यान से, कथा से, एक परंपरा से जुड़ा होता है। तो होली को लेकर भी जाहिर है कि कुछ कथाएँ हमें मालूम है, कुछ नहीं भी मालूम हो सकती हैं, और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं और जो युवा श्रोता हमारे हैं उन्हें संभवतः न पता हो। तो हम चाहते हैं विस्तार से आप बताएं।
कथाओं का तो ऐसा होता है, जैसे अब हम होली का त्यौहार मना रहे हैं और ये त्यौहार आज से नहीं मनाया जा रहा है। भगवान राम के टाइम भी देखते हैं, इनसे पहले भी चले जाएँ हिरण्यकश्यप के टाइम, जब भगवान नरसिंह का अवतार हुआ है, तब से होलिका के दहन की कथा का शुभारंभ हुआ है। भगवान राम के टाइम राजा के जो समय में स्थिति बनी, वहाँ पर राजा प्रथु थे, प्रथु राजा के समय में भी होली का उल्लेख मिलता है। और भगवान विष्णु के आज के दिन धूल को मस्तिष्क पर धारण करने के कारण इस त्यौहार को मनाया जाता है। यही वसंत का समय था।
अच्छा।
तो उस तरह से पहले दुलहरी दुलहंडी जिसको बोलना चाहिए, धूल से पहले होली मनाई जाती थी।
अच्छा, आपने कहा कि भगवान विष्णु द्वारा धूल को मस्तक पर
सतयुग की एक कथा आती है। उस समय में भगवान विष्णु ने आज के दिन वसंत के समय में भूमि को अपनी चारों उंगली लेकर त्रिपुंड उन्होंने तिलक लगाया था।
अच्छा,
तो धूरी को उन्होंने धारण किया था, इसलिए धूली का जो धुलेंडी हम त्यौहार मनाते हैं उस दिन मनाते हैं।
जी,
तो उस दिन सब जगह पहले ये त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद में फिर ये त्यौहार जो मनाया जाता रहा है, भगवान राम के टाइम पर भी ये त्यौहार दूसरे दिन धुलेंडी के रूप में मनाया जाता था। जैसे रात को होली जलाई तो दूसरे दिन लोग होली की जो राख होती थी उसको लोगों को रगड़ते थे।
अच्छा।
अभी भी गांव में प्रथा है, होली की राख को पूरा उसमें रगड़ दिया जाता है। और उस कंडे वाली जो राख होती है
जी,
और उससे फिर पूरे शरीर को उस पर मला जाता है। तो कंडे की राख की वैसे वैज्ञानिक उसमें भी व्याख्या करने जाएं, ये हमारे अघोरी संप्रदाय, एक किस्सा सुनाता हूँ। अघोरी संप्रदाय का एक छोटा सा किस्सा है। मैंने एक बाबा से पूछा था, मैंने कहा बाबा ये आप स्नान करने के बाद ये राख जो लपेटते हो इसका कारण क्या है। तो फिर उन्होंने बताया था इस राख लपेटने की, खैर ठीक है, हम जो धारण करते हैं भस्म धारण करना, ये हमारे उस विधान में आता है जो उनके सन्यास के विधान में,
सन्यास के, हाँ।
पर इससे एक तो ठंड नहीं लगती।
अच्छा।
बोले जब कई अब बर्फबारी हम लोग रहते हैं तो राख को लपेटने में अंदर गर्मी रहती है।
अच्छा,
दूसरा राख को लपेटने के बाद जितने ये मच्छर वच्छर होते हैं ये नहीं खाते।
अच्छा
तो उन्होंने एक वैसे सामान इसके आध्यात्मिक के साथ साथ ये पहलू भी उन्होंने बताया, और दूसरा स्किन की एलर्जी कभी नहीं होती। गाय के कंडे की राख को लगाने से स्किन के आए हुए रोग समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी ने भी एक बार शंकर जी से बोला था कि प्रभु मुझे आपका ये अटा हुआ स्वरूप देखना है जिसमें आपने भस्म धारण न किया हो। तो भगवान ने जब उनको वो स्वरूप दिखाया तो उनकी सुंदरता और उनसे इतने मोहित हुए, बोले प्रभु आज से आप इसको भस्म धारण करके ही रखना। माता पार्वती ने मेरे को सही संदेश दिया था। तो इसमें जो उल्लेख इसमें हमारे यहाँ मिलता है, होलिका में इस प्रकार से मनाई जाती रही। फिर इसके बाद भगवान कृष्ण के समय में जब राधा जी के यहाँ ये गांव बरसाने जाते हैं, तो बरसाने से पहले की जो कथा है वहाँ भी धुलंडी का ही प्रयोग, धूल वगैरह का ही प्रयोग किया जाता है। पर फूलों की होली शुरू हुई बरसाना में जाने के बाद, चूंकि बरसाना के लोग कृष्ण के और ग्वाल वालों के आनंद लेना चाहते थे, इसलिए फिर वहां से रंग उन्होंने डालना शुरू किया। तो बरसाने में जब राधा गोकुल आती हैं तब कोमलता के कारण उन पर पुष्पों की वर्षा होती है।
अच्छा।
तो इसलिए मथुरा वृंदावन गोकुल में फूलों की होली खेली जाती है। लेकिन जब बरसाने में जाते हैं तो वहां जैसे बरातियों के लिए हंसी मजाक करती हैं मायके की कन्याएं, तो इसलिए फिर वहां पर लठमार जो होली है उसका वहां पर प्रचलन है। और रंगपंचमी के दिन चूंकि भगवान ने राधा जी को रंग लगाया था, इसलिए रंगपंचमी के त्यौहार को मनाया जाता है जो चैत्र महीने में आता है।
हाँ हाँ हाँ।
तो इसलिए त्यौहार हमारे यहाँ पुराने समय से मनाए जाते रहे हैं।
तो हम कथाओं की बात कर रहे थे कि एक तो कथा हो गई कि आपने बताया विष्णु भगवान ने चूंकि धूल को मस्तक पर धारण किया था। हाँ। तो वो एक प्रसंग जुड़ता है इससे, और दूसरा हिरण्यकश्यप होलिका की कथा मालूम ही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, अगर उनके लिए बता सकें, यूं तो मालूम ही है सबको।
वैसे हिरण्यकश्यप उसमें ये तो कहा ही जाता है, भक्त प्रहलाद की परीक्षा के लिए चूंकि होलिका थी, उनको एक चुनरी भेंट मिली थी ऋषि के द्वारा, और उसकी विशेषता थी जब वो चुनरी ओढ़ के बैठ जाए तो उसमें अग्नि नहीं लगती थी।
अच्छा।
तो उस चुनरी को लेकर जब बैठी थी भक्त प्रहलाद को लेकर, आग जब उसमें जलाई गई तो चुनरी हवा के प्रभाव से चुनरी उनकी उड़ गई थी।
अच्छा।
इसलिए होलिका जल गई, चुनरी नहीं होने के कारण होलिका जल गई।
हाँ।
लेकिन भक्त प्रहलाद की रक्षा भगवान ने की,
भगवान ने की,
तो वो नहीं जल पाए। तो तभी से ये एक त्योहार होलिका का मनाया जाता है। तो
अच्छा।
वहां से ये त्योहार शुरू हुआ। फिर भगवान राम के टाइम पर दूसरी होली का उल्लेख आता
है,
राजा पृथु के समय में भी इस होली का उल्लेख आता है। राजा पृथु जी के टाइम क्या हुआ, एक बार बच्चे मरने शुरू हो गए थे वहाँ।
अच्छा।
ढूंढी नाम की एक राक्षसनी थी, वो उन बच्चों को खाने लगी थी। तब होलिका के त्योहार के समय में राजा पृथु जो थे, उन्हें होली की जो जली हुई लकड़ी थी, उस लकड़ी से चौराहे पर उन्होंने उस ठूठी जो राक्षसी थी उसको मार दिया था।
अच्छा।
उसको मारने के बाद फिर ये प्रथा शुरू हुई कि चौराहे पर होली जलाई जाती थी।
हाँ
हा। ढूठी को मारने के लिए।
हाँ हा।
तो इसलिए इसको दुल्हनी के रूप में माना जाता
है। मनाया जाता है। अच्छा, एक ये भी हम सुनते हैं कि इसी दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था, वो भी प्रसंग इससे जुड़ता है।
हाँ, इसमें भी कथा भगवान शंकर जी के जब आती सृष्टि के लिए, जब कामदेव ने भगवान को परेशान करना शुरू किया तो उन्होंने भस्म कर दिया। इसलिए भगवान शंकर जी के लिए कहा जाता है योगाचार्य, आदि योगी जो है वो यही है।
जी।
क्योंकि जब कामदेव नहीं और उसके बाद संतान की प्राप्ति होना।
हाँ।
तो ये एक है कि हम सृष्टि की उत्पत्ति के लिए सारे काम कर रहे हैं।
हाँ।
ना कि हम अपने भोग विलास के लिए कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कामदेव को पहले भस्म किया, क्योंकि रति के कहने पर उन्होंने फिर प्रद्युम्न के रूप में भगवान कृष्ण के घर जन्म लेने का उल्लेख किया। तो इसलिए भी हम इस त्यौहार को आखिरी मनाई जाती है। तो लास्ट उल्लेख तो ये मिलता है कि इस समय इसी त्यौहार को मनाया जाता है, और तब से प्रथाएं जो चल रही है वो आज तक अनवरत जारी है।
तो इस तरह से एक बहुत ही प्राचीन परंपरा के साथ होली उपस्थित है और होली आज भी मनाई जाती है। अच्छा, एक दिन का त्यौहार नहीं है होली। गांव देहात में हम देखते हैं तो महीने भर पहले से कुछ अनुष्ठान शुरू होते हैं, या 15 दिन पहले से। फिर कुछ शब्द हम सुनते हैं, होलाष्टक सुनते हैं, होलिका दहन की आपने चर्चा कर ही ली, रंगपंचमी सुनते हैं। तो इसे भी विस्तार से बताएं कि इनका क्या अर्थ क्या है, किस तरह से ये मनाया जाता है।
ये एक्चुअली फाग गिरना इसको बोला जाता है, और ये जो त्योहार है बसंत का त्योहार, ऋतु है, ऋतु जब परिवर्तित होती है
जी।
उसका त्योहार। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऋतुओं में बसंत में हूँ।
हाँ।
तो ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। वो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है आनंद स्वरूप है, राग का स्वरूप है, नृत्य का स्वरूप है, जो समस्त कलाएं उनका स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। और कलाओं की उत्पत्ति का समय उनके लिए वाणी उनके अंदर आना शुरू हुई, बांसुरी बजाने का जो समय है वो भी 9 वर्ष से शुरू होता है। तो ये पूरा फागुन का महीना और चैत्र का महीना ये दोनों बसंत के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो भी उनके सृष्टि की संरचना कहें या एक आनंद के उत्सव को कहें या हमारे अंदर जो समस्त चक्र होते हैं, इस समय सारे चक्र एक रिदम में होते हैं।
अच्छा।
तो उस चक्र के फायदे को लेने के लिए योगियों ने अपने योग से संबंधित बहुत सारे इसमें आसन सिद्ध किए जाते हैं। अग्नि जब जलना शुरू होती है चारों जगह हर चौराहे पर अग्नि की जब प्राकट्य होता है, तब नाना प्रकार के जो ठंड के समय में आए हुए वायरस वगैरह ये सब समाप्त हो जाते हैं।
लेकिन एक ये भी चलन है कि जो होलिका दहन होता है, मैं मतलब उत्तर प्रदेश की बात बता रही हूँ कि वहाँ पर सारा जो परिवार है सभी लोग उपटन लगाते हैं और फिर वो जो उपटन का जो बचा हुआ निकलता है उसको लेकर जाते हैं वो और उसको जलाते हैं। तो ये भी एक परंपरा है।
जब हम इस उपटन को लगाकर उतारते हैं तो इस उपटन को जनरली पानी में या गंदी जगह नहीं फेंकना चाहिए।
अच्छा।
तो इसको जलाने के लिए सीधा सीधा फिर होलिका ही रहती है, इसको उठाकर वहाँ जलाया जाए। तो ये हमारे कई दोषों को ये दूर करता है। और चूंकि फागुन का त्योहार 1 महीने शुरू होता है, होली के दिन तो उसका समापन
हो जाता है। बिल्कुल।
तो गाँव में पहले 1 महीने पहले होली का डंडा गड़ता था। उसमें क्या होता था, घर की एक हम साफ सफाई करते हैं दीपावली के टाइम पर
जी,
और दीपावली के बाद फिर 4-5 महीने का फिर गैप इसमें हो जाता है। अब हम फिर घर की सफाई करते हैं।
अच्छा।
तो आपने गांव में देखा होगा, तो लोग घर के जैसे टूटी टूटी लकड़ी पड़ी हुई है, पुराने झाड़ू पड़े हुए हैं, घर के साफ सफाई करके उन झाड़ूओं से मकड़ी के जाले को तोड़कर उन झाड़ू को वहां डाल दिया जाता है जहाँ पर होली का डंडा गड़ा होता है।
अच्छा।
तो 1 महीने पहले से सारी साफ सफाई और गंदगी सारी वहां जाकर पटक दी जाती है। कहा जाता है कि इस प्रकार के जो घर के नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो होली में जलकर समाप्त हो जाती हैं और पॉजिटिविटी फिर अंदर आनी शुरू होती है। और इसीलिए होलिका को जलाने के बाद हाथ पैर धोकर अंदर आने का जो एक विधान है वो इसमें विधान होता है।
कुछ लोग नजर उतार कर भी डालते हैं उसमें।
हाँ, नजर उतार डालते हैं। आर्थिक लाभ के लिए लोग श्रीफल के अंदर कुछ सामग्री भरकर डालते हैं, लोग हवन सामग्री उसमें डालते हैं, खीर चढ़ाते हैं। और माता बहनें तो सायंकाल इसमें पूजन करती हैं, तो नैवेद्य बनाकर उसकी पूजन की जाती है। और आपने भोजन माता बहनें अपने अपने जो प्रयोग जितने करना चाहिए सब करते हैं।
जी,
तो
जी।
अच्छा त्योहार है, महीने भर चलता है।
तो ये तो आपने 1 महीने की बात बताई। होलाष्टक का भी एक जिक्र आता है, होलाष्टक क्या है?
आज बड़ा विचित्र सी लोग के साथ स्थिति आती है, होलाष्टक में कोई काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन सत्य इसमें यह भी है कि होलाष्टक में यदि हम कोई शुभ काम करते हैं तो उसमें व्यवधान भी आता है और वो चीज़ें बड़ी परेशानी वाली भी होती हैं, क्योंकि मैं तो सब्जेक्ट में लगातार रिसर्च में रहता हूँ। तो देखा जाता है कि इस समय में किए गए जो कार्य होते हैं बहुत सफल नहीं होते हैं। और धर्मशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि होली के जो 8 दिन होते हैं होलाष्टक के, इस दिन जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती हैं ये पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं अंतिम समय के लिए, क्योंकि अब सूर्य का उत्तरायण शुरू होता है, सब स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, तो जाने के लिए सब लालायित होते हैं। तो उस समय 8 दिन जो होते हैं नेगेटिव एनर्जीज के दिन होते हैं, इसलिए होलाष्टक के समय में कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। और जब होली का दहन हो जाता है उसके बाद फिर शुभ कार्य नवरात्रि के बाद फिर शुरू होते हैं,
आरंभ हो जाते हैं। अच्छा, एक सवाल सहज ही मन में आता है कि जैसे हम दीपावली की जब बात करते हैं, रोशनी की बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश पर्व है ये, और होली रंगों से जुड़ा त्यौहार है, तो ये मन में आता है कि रंग ही क्यों, कोई इसका वैदिक महत्व है?
रंग का वैदिक महत्व इस समय में इसलिए बढ़ता है, जैसे हम दीपावली के समय में जब शीत ऋतु का और ठंड का आगमन शुरू होता है तो वहाँ पर दीपों के रूप में इस लक्ष्मी का आगमन का वहाँ पर संदेश दिया जाता है। बसंत के समय में पूरी प्रकृति ही बसंती हो जाती है, उसके लिए फिर अग्नि के रूप में उसका स्वागत किया जाता है। रंगों का विधान इसलिए आता है कि इस समय में आपने जनरली वैसे भी देखा होगा मन प्रफुल्लित इस समय में बहुत होता है, सारे आपके 5 चक्र जागृत होते हैं।
अच्छा।
उन जागरण में ब्रह्मरंध्र भी आपका जागृत हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो 7 चक्र हैं पूरे पूरे जागृत हो जाते हैं और इनके सबके अपने अपने एक रंग हैं। हाँ। आजकल तो नए प्रयोग हैं, जैसे आपको कोई मानसिक तनाव हो रहा है तो पीले रंग की बल्ब वगैरह लगाएं, ध्यान करेंगे तो आपका वो तनाव कम हो जाता है, आगे बढ़ने की ज्यादा नहीं सोच पाते हैं, तो लाल रंग को रखेंगे, ऑरेंज को रखेंगे तो आप में उत्साह जागृत हो जाता है। तो इसीलिए जो फागुन का समय है, इस समय में हम जब रंगों को लगाना शुरू करते हैं तो ये हमारे अंदर एक प्रकार का उत्साह जागृत करता है।
मुझे रुचि आई इसमें कि आप जो रंगों की बात बता रहे थे, तो रंगों को पूरा ही कर दीजिए, क्योंकि रंग पर्व है, तो इस बहाने से रंगों के विज्ञान को भी हम समझ लें। तो लाल रंग के लिए आपने कहा, जब कुछ उन्नति की बात हम सोचते हैं, रुकना
जब
रुक रहे हो,
कई लोग डिप्रेशन में हैं, कई तनाव में आते हैं, तो उत्साह की जब बात आती है तो फिर लाल रंग का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो लाल रंग से इसमें होली खेली जाती है। ऑरेंज कलर होता है जब हम गुरुओं के लिए कोई रंग लगाते हैं, किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको हमको सम्मान देना है, उसके लिए जब हम रंग लगाते हैं तो हम फिर ऑरेंज कलर के रंग को इसमें उनके लिए लगाया जाता है। गुलाल सामान्यतः हम एक दूसरे के दोस्तों को लगाने के लिए पहला जो हाथ लगाया जाता है गुलाब का, फिर इसके बाद तो जोड़दंग शुरू हो जाता है।
बिल्कुल।
और जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक उग्रता में है, कई परेशानी आती है, तो ऐसे व्यक्ति को हरे रंग से खिलाया जाता है। सामान्य जब कोई पुरुष विशेष बालकों को ही हो, जब महिलाओं को वो रंग लगाएंगे तो वो यथा, क्योंकि हमारे क्या महिलाओं को भी ऐसा नहीं है कि भाई बहन को कहीं भी उठाकर रंग लगा दे, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ विधान होता है, यदि माता पिता को आप रंग लगा रहे हैं तो आपके नाखून पर रंग लगाना है, ऐसा नहीं माता पिता को पोत दिया आपने। भाभी को रंग लगा रहे हैं तो भाभी के पहले चरण पर, फिर गाल पर, ये रंग वहाँ पे लगाया जाता है, देवर की एक मर्यादा है। बहन को रंग लगा रहे हैं तो पहले बहन लगाएगी भाई को, फिर भाई उसको तिलक के रूप में लगाता है, छोटा सा रंगों को वहां पर बहन के लिए वो लगाता है। तो ये रंग जो हैं, इसमें काले रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता,
नहीं किया जाता।
आजकल काला रंग शुरू हुआ है तो ये ठीक नहीं है। अबीर गुलाल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अबीर गुलाल हम जो घर में सन्यासी हो जाते हैं, कई विदुर पुरुष हैं, उनके लिए जब लगाए जाते हैं अबीर गुलाल का, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। और मुझे ये रंग विशेष है, ऑरेंज कलर का इस्तेमाल हमें इसमें ज्यादा करना चाहिए।
अच्छा।
इस समय बसंत भी रहता है और ऑरेंज जो कलर होता है वो हमारे मणिपुर चक्र को जागृत करता है।
अच्छा।
और मणिपुर चक्र में 72,000 नाड़ियों का एक स्थान है। जब मणिपुर चक्र जागृत होता है तो इस बसंत का जो मूल महत्व है वो मणिपुर चक्र से है। बसंत के समय में एक उत्साह होता है,
उत्साह होता है। हाँ। बिल्कुल।
तो वासना और उत्साह में अंतर, इसलिए हम मणिपुर चक्र पर रहते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र पर यहाँ नहीं होते हैं। ठंड के समय में हम स्वाधिष्ठान चक्र पर होते हैं और इस चक्र की यात्रा ऊपर शुरू होती है, इसलिए पीले कलर का, ऑरेंज कलर का यहाँ पर विशेष महत्व है। ऑरेंज के बाद फिर आता है रेड कलर, जो हमारे हृदय चक्र को जागृत करता है। हरा और रेड, ये दो जो कलर होते हैं, ये दो कलर, एक सम्मान के लिए ग्रीन होता है और सामान्य के लिए ये लाल रंग होता है। फिर इसके बाद ब्लू कलर होता है, लाइट ब्लू, जो हमारे गर्दन चक्र को एक जागृत करता है। और फिर हमारी अबीर होती है, गुलाल होती है, जो आगे चक्र को जागृत करती है।
हाँ।
तो विशुद्धि के ऊपर जैसे ही हम चलते हैं वैसे ही इन रंगों का प्रभाव बढ़ना शुरू होता है। और जब हम उसी रंग को आंखों के द्वारा देखते हैं तो ये पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं। जब आंख उस रंगों को देखती है तो हमारा वो चक्र फिर जागृत होता रहता है। इसलिए इसका स्थान तो बड़ा
इसलिए मतलब रंगों का ऐसे महत्व है और ये उसका एक वैदिक महत्व है, मतलब चक्र से वो जुड़ा हुआ है,
जुड़ा हुआ
हमारे
है।
चक्रों से, सातों चक्रों से, उन सातों चक्रों का एक रंग है और इससे जुड़ा हुआ, इसलिए रंग पर्व ये है। और आपने कहा कि जो नारंगी रंग है उसका विशेष महत्व है, तो चूंकि वसंत का,
क्योंकि हमारे यहाँ जो पांच ज्ञानेन्द्रिय है ना, उन पंच ज्ञानेन्द्रिय में आँख जो देखेगी वो हमारे अंदर होगा।
अच्छा।
तो देखने के लिए रंग जब अंदर पहुंचता है तो उस रंग को वो पर्टिकुलर जगह पे उतार देती है, उस चक्र पर उतार देती है।
अच्छा।
हाँ। कान वो हैं, जब होली हो रे होली के, और जो होली के लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, होली है, और ये तेज तेज चिल्लाते हैं ना, जब ये कर्ण को पहुंचते हैं तो वो होली है जो मंत्र हो जाता है, ना कि वो एक शब्द रह जाता है, वो फिर हमारे ब्रह्मरंध्रों को जागृत करके वो भी फिर नाभि को जागृत करता है। त्वचा भी पंच ज्ञानेन्द्रिय माता है, तो त्वचा पे जो हम रंग लगाते हैं तो इस रंग से त्वचा पर पहुंचता है, तो ये हमारे जितने भी इसके अंदर सांस लेने के पोर होते हैं त्वचा में, वो सारे हमारे खुल जाते हैं। और जीवा जो एक ज्ञानेन्द्रिय है, उसमें हम इस सब चीजों को टेस्ट करते हैं, इस समय रायता बनना शुरू हो जाता है, खट्टी चीजें खानी शुरू हो जाती हैं, तीखी चीजें खानी इसमें शुरू हो जाती है, गुंजिया का इसमें विशेष महत्व बन जाता है, तो वो फिर हमारे जीवा के लिए होता है।
हाँ।
तो इन पांचों ज्ञानेंद्रियों का जो उपयोग है वो यही एक त्यौहार है जिसमें पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है, और यही पंच ज्ञानेंद्रिय हमारे सातों चक्रों को जागृत कर देती है इसी बसंत के महीने में, और समय में ये उतनी जागृत नहीं होती है जिसमें की ये बसंत में होती है।
जी जी, तो ये बहुत ही रोचक बात आपने बताई कि जो हमारे सातों चक्र हैं उनके जागरण का भी एक उपक्रम है ये, रंग इसलिए शामिल है होली के त्योहार में, और रंगों का एक वैज्ञानिक महत्व तो है ही, चिकित्सा में भी रंग काम आता ही है, आजकल तो रंगों से चिकित्सा हो रही है, तो वो एक वैज्ञानिक महत्व उसका उस तरह से हो जाता है। अच्छा, एक परंपरा से हम होली मनाते आ रहे हैं आचार्य जी, और समय के साथ हर चीज़ में परिवर्तन हो जाता है, एक तरीके में परिवर्तन हो जाता है, हम किन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं इसमें परिवर्तन होता है, नई खोजें हो जाती हैं, अन्वेषण हो जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि हमें होली कैसे मनानी चाहिए? आज के समय में हम केमिकल्स वाले रंग भी प्रयोग में लाते हैं, गीला रंग भी प्रयोग में लाते हैं, तो बहुत कुछ होता है, या होलिका दहन में भी जैसे हमने किया तो कुछ लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, आजकल गोकाष्ठ की चर्चा है, एक होली का त्यौहार जो किस तरह से हम मनाएं, आप क्या कहेंगे?
होलिका के त्यौहार को जलाने का जहाँ तक सवाल है, वहाँ गोकाष्ठ ही जलाया जाता है, पहले भी कंडे वंडे लगाए जाते थे, होलिका सिर्फ एक डंडा लगता था जिसको होली का डांडा बोलते हैं, वो मोटा एक लकड़ी का होता था, बाकी लकड़ियों का इस्तेमाल होता था झाड़ियों में, जैसे गाजर घास आ जाती है, इस तरीके की जो झाड़ियाँ उत्पन्न हो जाती है इनको जलाने के लिए वहाँ पर रखी जाती थी, और मूल जो होता था वो गोकाष्ठ होता था, गाय के गोबर के कंडे जिनको उपले बोलते हैं, उनसे इसको जलाया जाता था, और वही उपले जब हमारे शरीर पर धुलेंडी के दिन लगते हैं तो स्वास्थ्य को लाभ प्रदान
करते हैं।
तो पहला तो ये करना चाहिए कि बहुत बड़ी बड़ी होली और टनों से लकड़ियाँ जला देते हैं तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा हम ना करें। दूसरा, इसमें रंगों का जब हमारे शरीर पर स्पर्श होता है और फिर हम पानी से इसका स्नान करते हैं उपटन वगैरह को लगाकर, तो ये हमारे शरीर के समस्त रंध्रों को खोलता है, तो इसमें हर व्यक्ति को उस तरह से त्यौहार मनाना चाहिए। और होली का त्यौहार पूर्ण मर्यादाओं का त्यौहार है, उस मर्यादाओं के अंतर्गत रहकर इस त्यौहार को मनाया जाए तो हम बसंत का आनंद ले पाएंगे। ये फुहड़ता का त्यौहार नहीं है, वैलेंटाइन डे जैसा नहीं है कि हम अलग से जाएं लेकर और इस त्यौहार को मनाना शुरू करें, ये इसमें सादगी है, इसमें मर्यादा है, इसमें शांति है, इसमें धर्म है, आध्यात्म है, तो उस तरह से इस त्यौहार को, जो भी आपके यहाँ होली खेलने आता है उसको भूखे पेट ना जाने दें, इसलिए हमारे यहाँ खिलाने का विधान है।
जी जी।
और जब हम चीजों को खिलाते हैं तो खट्टी मीठी जो रायता बनता है चाहे एक चम्मच दें, चाहे पंचामृत बनाकर रख लें, वो इसमें व्यक्ति को खिलाना चाहिए। तो उस प्रकार से इस त्यौहार को जब आप मनाएंगे सादगी और नियम के अनुसार तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, और ये त्यौहार तभी सार्थक हो पाएगा जब इसको नियम अनुसार मनाया जाए,
बिल्कुल,
ना कि फुहड़ता के साथ।
बिल्कुल, तो जो प्राकृतिक रंग प्रयोग में लाए जाते थे, आजकल भी हर्बल कलर्स आते हैं, तो उसका हम विशेष रूप से प्रयोग कर लेना कि केमिकल्स का प्रयोग करें?
केमिकल्स का प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है त्वचा, उसको हम साफ कर रहे हैं, तो केमिकल से साफ करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, त्वचा को साफ करने का स्थान पर उसको बेकार ही कर देगा, स्किन के रोग हो जाते हैं। कुछ नहीं है तो आप सिंपल अबीर गुलाल की सूखी होली खेल सकते हैं, और टेसू के फूल इस समय में खिल जाते हैं,
वो
बहुत ही ज्यादा लाभकारी होते हैं। और आजकल तो खैर अब प्राकृतिक रंग भी आने लग गए हैं मार्केट में, क्योंकि अभी तक आज से 10 साल पहले तक था कि बीच में केमिकल का जमाना शुरू हुआ था, पर अब जैसे जैसे सजगता बढ़ रही है तो मार्केट भी उसके अनुसार होता जा रहा है, तो केमिकल के रंगों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
जी जी, तो देखिये बहुत ही सुंदर त्यौहार है ये, और एक दूसरा ही महत्व आपने बताया कि हमारे चक्रों के जागरण का एक ये मतलब बहाना बनता है या उसका एक समय होता है ये, जो बहुत महत्वपूर्ण है एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी। तो मैं सोच रही थी कि आप होली के महत्व पर विस्तार से चर्चा करें कि होली के महत्व को आप किस तरह से देखते हैं, इस त्यौहार के महत्व को।
भारतीय संस्कृति में हर तिथि का एक अपना महत्व है, वेदों में एक एक ऋचाएं लिखी हुई है, ऋचाएं भी पूर्ण स्वरूप में है, उनका भी एक अपना महत्व है। उसी प्रकार से होली वर्ष का अंतिम त्यौहार होता है, बसंत का त्यौहार, उसका चैत्र शुरू हो जाता है, नया साल शुरू हो जाता है,
बिल्कुल।
तो इसका जो त्यौहार का विशेष महत्व है, ये महत्व योगिक आध्यात्मिक सभी प्रकार से इसका विशेष महत्व माना जाता है, तो उसको उसी रूप में ही मनाना बेहतर होता है जिस रूप में इसकी कल्पना की गई है। तो ऐसा मनाएंगे आप तो निश्चित रूप से इसमें लाभान्वित होंगे।
और चूंकि प्रेम की बात बात की जाती है, सद्भाव की बात की जाती है, भाईचारे की बात की जाती है, तो वो जो एक विभेद सामाजिक रूप से हो जाता है हमारे मन में एक दूसरे के लिए, साल भर में कुछ जो कटु चीज़ें जो मन में आ जाती हैं उनको भी होली के साथ जलाने का एक अवसर होता है, प्रेम से एक दूसरे के पास आने का एक अवसर होता है, तो उसका भी एक ध्यान हम रख सकते हैं।
नारंगी रंग विशेष रूप से उसका प्रतीक है। यदि आपको किसी व्यक्ति से कोई माफ़ी मांगनी गलती हुई तो आप नारंगी रंग उसको लगाएंगे तो समझ में आ जाएगी ये व्यक्ति क्षमा मांग रहा है। इसलिए हम गुरुओं को नारंगी रंग लगाते हैं, तो उनके जो बड़े हमसे होते हैं उनको हम नारंगी रंग का इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो ये विशेष रूप से उसका एक कारक बनता है।
अच्छा आचार्य जी, अक्सर जब होली की बात होती है तो लोग मस्ती की, उमंग की, उल्लास की बात करते हैं, और एक निर्द्वंद तो ठीक है, एकदम स्वच्छंद एक आचरण हो जाता है, और देखने में आता है कि इसमें कुछ नशे का भी चलन होता है और बहुत बार कुछ छेड़छाड़ की स्थितियां भी बनती हैं, तो हम ये चाह रहे थे कि आप अपनी तरफ से कुछ कहें कि किस तरह से आनंदित हो सकता है मनुष्य।
हमारा धर्मशास्त्र किसी भी प्रकार के ऐसे नशे या नेगेटिव आदतों की परमिशन तो कभी भी नहीं देता है, और भांग वगैरह का भी जहाँ तक है ये अघोरियों के जो शैव संप्रदाय के हैं उसकी बातें करता है, तो वो भांग भी हमारे चूंकि वो कुछ फिल्मों का कल्चर आया, कुछ ऐसे मिक्स कल्चर हुए, इसलिए भांग वांग खाके करने धरने का प्रचलन शुरू हुआ जो धर्मशास्त्र के विरोध में है।
हाँ।
हमारे यहाँ जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं रायते की, चूंकि अभी उत्तर प्रदेश से हैं तो अच्छा आपने बताया, तो वहाँ तो एक विशेष बनता है, गाजर को पानी में डाला जाता है, अचार की जो सामग्री डलती है उसमें राई वगैरह उससे उसको बगाड़ दिया जाता है, ये एक महीने पहले ही प्रोसेस होती है और उसके मटका भर लिया जाता है, जैसे आप फुल्की खाते हैं ना जो पानी बनता है
वैसा,
उस पानी को पिलाने का इसमें विधान होता है।
हाँ।
किसी भी प्रकार के नशे का विधान भारतीय संस्कृति के किसी भी त्यौहार में नहीं आता है,
कभी भी नहीं।
वो तो अभी कुछ संस्कृतियाँ आई हैं, कहीं के पान बनास वाला कुछ कुछ करते करते जो चीजें गलत प्रस्तुत हो गई हैं, संस्कृति हमारी विरोधी रही नशे की, क्योंकि तमस में आता है, भारतीय संस्कृति सत्व की बात करती है, तमस से दूरी की बात करती है, तो आप भी किसी प्रकार के यदि ऐसे नशे में रहकर कोई गलती भी कर बैठे तो सजग रहकर इस त्यौहार को मनाया जाए, ये इस त्यौहार की विशेषता है, ना कि नशे में इस त्यौहार को मना के मस्ती में रखा जाए। दोस्तों के रूप में भी नशा नहीं करना चाहिए, वो एक मस्ती अलग होती है जो बोलने चिल्लाने खाने पीने वाली होती है, पर नशे को हमारे मान्यता दी ही नहीं गई।
तो आनंद हो, गीत संगीत के साथ हो, नृत्य के साथ हो, रंगों के साथ हो, खुशियों के साथ हो, ऐसा हो कि किसी को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, कोई किसी भी तरह से आहत ना हो, तभी तो त्यौहार का मतलब है,
तभी त्यौहार का आनंद
है ना, तभी तो उसका
संस्कृति हमारी यही अलाउ करती है, इस प्रकार से आप इस त्यौहार को मनाएं तो निश्चित रूप से आनंद आएगा।
तो अब हम चाहते हैं कि चलते चलते आप एक संदेश हमारे श्रोताओं के लिए दें।
इस त्यौहार को जितना सादगी से मनाएंगे, इस त्यौहार के आप उतने आनंद को उठा पाएंगे, और ये जो त्यौहार है ये हमारे धर्म, आध्यात्म, संस्कृति इन सभी का एक मिला जुला स्वरूप है, और हमारे वर्ष का ये अंतिम त्यौहार है, जैसे आप 31 तारीख को धूमधड़ाका करते हैं दिसंबर को मनाने का, ऐसा ही ये हमारी संस्कृति का फागुन अंतिम महीना होता है और ये अंतिम ही त्यौहार रहता है, पूर्णिमा के दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है, और रंग पंचमी तक ये त्यौहार चलता है। रंग फूल इनको आप विशेष महत्व दें, और यदि गाय के उपलों की राख मिलती है तो इसका त्वचा पर स्पर्श अवश्य कराएं, ताकि आप पूर्ण रूप से आपकी स्किन स्वस्थ हो, क्योंकि आजकल स्किन की बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, उसमें भी ये त्यौहार आपके लिए लाभप्रद होगा, और सम्मान और हर्षोल्लास से मनाएंगे तो निश्चित रूप से भगवत कृपा भी आपको प्राप्त होगी।
तो बहुत सुंदर चर्चा रही आचार्य राजेश आज होली पर आपके साथ, सातों रंग उतर आए हमारे इस स्टूडियो में और वो सारे रंग हमारे श्रोताओं तक भी पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए।
धन्यवाद।
तो श्रोताओं, होली रंगों की विभिन्नता के बीच भी एक रंग हो जाने का त्योहार है, ये रंग प्रेम का है, सद्भाव का है, मनुष्यता का है, ये रंग अपनत्व का है, हर किसी को गले लगाने का है, एक दूसरे को क्षमा कर एक दूसरे के करीब आने का है। तो पूरे भारत में होली मनाई जाती है, हर जगह अपनी उसकी विशेषताएं हैं, लेकिन इसमें छुपी हुई जो मूल भावना है वो पूरे भारत में एक है, तो उस भावना से भरकर ही मनाइए होली। और कितना सुंदर वातावरण है, होली की उमंग छाई हुई है, तो मुझे वो दो पंक्तियां याद आती हैं कि जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और डफके शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की। तो गीत संगीत के साथ, आनंद उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाइए। होली की अनंत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। अब इजाज़त दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।